ओम शांति। ओ बाबा, ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो बस मेरा है। ये गीत किसका है? मेरा गीत है, आज ब्राह्मणों का है, एक दिन सारे विश्व का होगा और विश्व की उन आत्माओं तक यह गीत पहुंचाने के हम निमित्त बनेंगे। हर दिल में परमात्मा को स्थापित करना यह हमारा कार्य है। तो इस कार्य को करने वाले कितने फूर्त, कितने स्फूर्तिदायक, कितने ऊर्जा से संपन्न रहना चाहिए। इससे पहले कि हम इस टॉपिक की शुरुआत करें, श्वेत वस्त्रों पर रंग, कौन सा रंग? आलस्य का अदृश्य सा रंग। बाकी रंग तो नहीं है, काला रंग तो नहीं है, हरा नीला पीला रंग तो नहीं है, कौन सा है? अदृश्य है, इसके लिए तो पता नहीं चलता। और सिलवटे है अलबेलेपन की, इसके लिए हमने उसे स्वीकार करके चला है। तो इससे पहले कि इस टॉपिक की गहराई में जाए, हमारे पास नौजवान ब्रह्मा कुमार अनुज भाई है और उन्होंने कुछ प्रेरणादायी कविता लिखी है और वो चाहते हैं कि अपनी कविता सबके सामने सुनाए। तो आ जाइए, ये ले लीजिए।
ओम शांति। सचिन भाई जी, आप हो ग्लोबल के नोबल, आप हो ग्लोबल के नोबल, जो बड़ा है जो बड़ा है कमजोर लोगों का मनोबल, और हेल्प करे उन्हें टू बी स्टेबल। भाई जी, आप हो विशेष आत्मा, आप हो विशेष आत्मा, जो करे विकारों का खात्मा, जो करे विकारों का खात्मा, और सदैव सोचे सकारात्मा। सचिन भाई जी, आप हो बाबा के नूर, जो रहे सदैव कांटों से दूर और गुणों से भरपूर। आप हो नॉलेज के फूल, जो करे सबका तन कूल। भाई जी, आप हो अव्यक्त बाबा के व्यक्त मॉडल, जो करे हर परिस्थिति को हैंडल, और उजाले सबके अंदर खुशी का कैंडल।
मधुबन में एक 6 साल का कुमार आया था एक बार, तो उससे पूछा था ज्ञान में कब से हो, तो उसने कहा था ज्ञान में 3 साल से हूं और 2 साल से पवित्र हूं। एक छोटी सी कुमारी आती है 8 साल की मधुबन में, वो कहती है मैं दादी मनोरिंद्रा हूं। पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। ओम शांति। अंग्रेजी में एक कहावत है, ट्रस्ट इन अल्लाह बट टेदर द कैमल फर्स्ट। अल्लाह पर विश्वास करो परंतु टेदर, टेदर अर्थात बांधना रस्सी से, ऊंट को पहले रस्सी से बांधो। अल्लाह पर विश्वास करो परंतु ऊंट को रस्सी से पहले बांधो। टेदर, TETHER, टेदर द कैमल फर्स्ट। एक सूफी कहानी है ये, कि जिसमें एक गुरु होता है सूफी संत, जिसका एक शिष्य होता है जो बड़ा ही आलसी होता है, और उनके पास एक ऊंट होता है। तो वो ऊंट को लेकर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं हमेशा। एक बार एक रेगिस्तान में वो पहुंचते हैं, वहां पे अपना टेंट बनाते हैं और वो गुरु वो सूफी संत अपने शिष्य से कहता है कि रात हो रही है, ऊंट को खूंटी से रस्सी से बांध देना, रस्सी से खूंटी पे बांध देना। तो गुरु ये आज्ञा देता है अपने शिष्य को, क्योंकि रात हो रही है, रात में दोनों सो जाएंगे, इसलिए ऊंट को रस्सी से बांध दो। तो वो जो शिष्य होता है, जो कि साधना करता होता है और अपने गुरु को हमेशा अल्लाह से बातें करते हुए देखता है, तो जब गुरु सो जाता है तब वो अल्लाह से प्रार्थना करता है, हे अल्लाह सब कुछ तू ही करने वाला है, ये जो ऊंट है अब इसकी पूरी जिम्मेवारी तेरी है, अब तू ही इसे रात भर संभालना, ये बांधने का काम मैं नहीं करने वाला, ये सब अब तेरे अर्पण कर दिया है मैंने, अब तू ही इसको देख लेना, तू ही इसको संभाल लेना, ये सारा तेरा काम है, मेरा कुछ नहीं। और वो सो जाता है। दूसरे दिन उठते हैं दोनों, तो पाते हैं ऊंट गायब, या तो भाग गया या किसी ने चुरा दिया या कहीं चला गया। तो गुरु पूछते हैं अपने शिष्य को कि वो ऊंट को तुमने खूंटी से नहीं बांधा था? वो कहता है कि मैंने आपसे ही सीखा है हर काम अल्लाह पर छोड़ देना, तो मैंने अल्लाह से प्रार्थना की, इबादत की कि हे अल्लाह ये ऊंट अब तुम्हारा है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम ही इसको संभालो अब, और तुम ही इसको बांध भी देना उससे खूंटी से, और एक बार नहीं तीन बार कहा उससे, जैसे आप प्रार्थना में कहते हो वैसे ही। गुरु कहता है बात तो तुम्हारी सही है, पर वो क्या है, अल्लाह को हाथ नहीं है, उसे तुम्हारे हाथों की जरूरत है, वो खुद नहीं कर सकता है, उस पर विश्वास तो करो, परंतु टेदर द कैमल फर्स्ट, पहले अपना काम करना फिर उस पर विश्वास करना। हाँ, उस पर विश्वास किया, पहले अपना काम किया, विश्वास किया, उसके बाद अगर चोरी हो गई तो सब कुछ हमने ठीक किया फिर भी चोरी हो गई तो फिर उसकी जिम्मेवारी है, तो फिर वहां ड्रामा है। तो आज जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा ही कुछ है। श्वेत वस्त्र हमने धारण कर लिए, विकार तो चले गए, विकारों के रंग उसमें नहीं रहे, परंतु अदृश्य रंग है आलस्य के, सिलवटे है क्रीजेस। सिलवटों को क्या कहते हैं, कोई दूसरा शब्द क्या कहते हैं, रिंकल्स, सोड़ा मोड़ा, क्या कहेंगे उसको? सिलवटे तो है ही, और कोई दूसरा शब्द, ये ऐसे हो जाता है ना, क्रीजेस, फोल्ड्स। तो अलबेलेपन की सिलवटे, तो इस जीवन में यदि पांच विकार तो छूट गए, परंतु ये जो आलस्य है, ये जो अलबेलापन है, ये जो सूक्ष्म सिलवटे है और ये जो सूक्ष्म रंग है जो दिखाई नहीं देता, वो भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। इतना ये सूक्ष्म विकार है, क्रोध चला गया, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, पवित्रता संपूर्ण है, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे, क्या कारण है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म आलस्य, लेजीनेस, अलबेलापन, केयरलेसनेस। केयरफुल होना अलग है, केयर फ्री होना अलग है और केयरलेस होना अलग है, तीन शब्द है। एक है केयरफुल, सावधान, आज के मुरली में भी एक जगह बोला है सावधान। दूसरा शब्द है केयर फ्री, केयर फ्री अर्थात बेफिक्र बादशाह, फिक्र से फारी, केयर फ्री है वो, पॉजिटिविटी है उस शब्द में, केयर फ्री में लाइटनेस का भाव है। और तीसरा है केयरलेस, अर्थात अलबेला, गफलत में जो है, लापरवाही जो कर रहा है, बेपरवाह जो है, लापरवाही, बेपरवाही, अलबेलापन, गफलत, अलग अलग शब्द है समान अर्थों के। तो क्या ऐसा भी कोई अलबेलापन है इस जीवन में कि सारे विकार तो चले गए फिर भी प्रगति नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हुई है, स्पिरिचुअल का जो, स्पिरिचुअलिटी का जो ग्राफ है, स्पिरिचुअल ग्राफ, वो प्लेट्यू, एक ऐसा स्टेबल हो गया है। पहले पहले तो बहुत उन्नति हुई, फिर अभी कई सालों से स्टेबल ही चल रहा है, प्लेन, ऐसे नहीं जा रहा है ऊपर, ऐसे चालू है, प्लेट्यू। क्या कारण है? तो ऐसे फिर से सात बातें, उसकी हम चर्चा करेंगे। सातों ही बहुत पावरफुल बातें हैं, जहां पर हम आलस और अलबेलेपन से ग्रसित है। सबसे पहला, अमृत वेला। सबसे पहला अमृत वेला। दूसरों को हम सिखाते हैं अमृत वेला कैसे किया जाए, योग कैसे किया जाए, राजयोग के क्या फायदे हैं, राजयोग का ऐसा ऐसा कोर्स होता है, इससे ये शक्तियां मिलती है, परंतु हम स्वयं उस राजयोग का कितना अभ्यास कर रहे हैं? राजयोग शिविर गया, कोर्स किया, वर्कशॉप किया, सेमिनार किया, लेक्चर किया, भाषण दिए, प्रवचन दिए, सब कुछ किया, परंतु मैं आत्मा इस राजयोग का कितना अभ्यास कर रही हूं? राजयोग के लिए जो धारणाओं की आवश्यकता है सारी है जो किताब में लिखी है, फिर भी राजयोग का जो हम दूसरों को कहते हैं कि ये अनुभव होता है, वो तो हमें नहीं हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है सूक्ष्म जो आलस छिपा है अलबेलेपन का, जो आलस है, जो अलबेलापन है इस अमृत वेले के प्रति, उसको हटाना है। हमें याद है जगदीश भाई ने अपनी एक किताब में लिखा है अपना एक अनुभव, 1983 में शायद, जस्टिस अय्यर शायद उनका नाम था, कृष्णा अय्यर, वो मधुबन आए थे, कृष्णा अय्यर इंद्रप्रस्थ में रुके थे। अब उनकी एक आदत थी सुबह 2 बजे उठने की, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो अपने कार्य के लिए किताबें लिखने का, लॉ की किताबें लिखने की बहुत उनको आदत थी, कितनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी किताबें, अभी तो अभी अभी शरीर छोड़ा है उन्होंने कुछ सालों पहले ही, तो और मधुबन में आए थे। अब मधुबन में कल्चरल प्रोग्राम ये वो, पर उनका ऐसा नियम था बस 10 बजे सो जाना, 10:15 तक सो जाना, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उनका ये नियम था कि सुबह 2 बजे उठना ही है, और उठकर वो किताबें लिखते थे। तो जगदीश भाई ने लिखा कि देखो, ये बाहर का व्यक्ति एक लौकिक प्राप्ति के लिए या लौकिक इंटरेस्ट के लिए कितना नियमित है और कितनी लगन से उठ जाता है, और हम लोग जहां पर कल क्लास करा रहे थे, आशुतोष की अमृत वेला है ये, वरदानी वेला, जबकि आशुतोष, आशु अर्थात जल्दी, तोष अर्थात प्रसन्न, जल्दी प्रसन्न होने वाला भगवान भोलानाथ, तुरंत वरदान देने वाला भोलानाथ आशुतोष, वो सारे वरदान दे रहा है सुबह, परंतु हम आलस्य में हैं, हम अलबेले हैं, अलर्टनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, नींद है, झपकी आ रही है, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर। एक भाई था, वो ऐसा नीचे पूरा गिर जाता था, बैठे बैठे उसको कहा क्या कर रहे हो, वो कहता था सकाश धरती को। हॉस्पिटल में हमारी एक डॉक्टर है, तो वो अभी कहीं बाहर पढ़ने के लिए गई है, पर जब भी मधुबन में आती एकदम नशा चढ़ जाता है उसको, सुबह 2 बजे अमृत वेला। तो उसने एक बार अनुभव सुनाया था, सुबह सुबह ढाई बजे कुटिया में जाके बैठ गई। पीछे तीन चार माताएं बैठी थी, तो उसको नींद आने लगी। फिर इस बहन को, डॉक्टर को, बहुत जबरदस्त भयंकर नींद, ऐसी ऐसी बहुत नींद आ रही है। अब उसको थोड़ी चिंता हो गई, पीछे के लोग हैं, उन्होंने मुझे देख लिया, क्योंकि नींद आना तो कोई बड़ी बात नहीं, पर हमको नींद आ रही है योग में और कोई देख ले तो इज्जत का सवाल है। फिर हमारे ज्ञानी और योगीपन की स्टेटस दांव पे लग रहा है, लोग क्या कहेंगे, ये तो भाषण बहुत अच्छा करते और योग में नींद, ज्ञान तो बहुत सुनाते हो और योग में नींद। तो उसको इतनी चिंता हुई कि ये पीछे जो बैठी है बहने या माता है, उसने देखा तो नहीं, पर लगा कोई है पीछे तीन चार, उन्होंने मुझे देख लिया। अब थोड़ी सी चिंता हुई तो उसने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो पांच माताएं पांचों के पांचों सो रही थी तो वो भी निश्चिंत हो गई, अब कोई चिंता नहीं। तो अमृत वेला, हमको याद है मेडिटेशन हॉल में एक बार रतन मोहिनी दादी योग करा रही थी, ठीक है, सब बैठे थे तो बहुत सारी माताएं थी, सारी सो रही थी इधर कुछ भाई थे वो भी सो रहे थे, तो दादी बीच में साढ़े चार बजे सफेद लाइट कराई, सब खड़े हो जाओ, कुछ बोला नहीं, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए और अब बैठो, फिर योग चालू। ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, उसकी तैयारी रात से थोड़ी चालू हो, उसकी थोड़ी प्लानिंग हो, उसकी थोड़ी अवेयरनेस और बढ़े, उसमें इतनी सारी चीजें हमको मिल रही है। हम उसमें अगर ऐसे ही जाके बैठ जाए और वैसे ही इंतजार करते बैठे कब पौने पांच बजे और ये पूरा हो जाए। और एक दूसरी बात, अमृत वेले के बाद एक गीत बजता है, वो गीत जो है वो जो तक खटिया होती है वहां से आता है, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की बाहों में, त्यज अगर मगर आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में। कहां से आता है ये गीत? तकिया से, खटिया से, खटिया पुकारती है आ जाओ सोने के लिए। कब अमृत वेला पूरा हो और आराम से सो जाए फिर से, क्यों? तो कहते हैं हमको टाइम नहीं मिलता बाद में, परंतु है तो बड़ी सत्य बात ही, अमृत वेले के बाद सो जाना। किसी मूर्ति में आया है ये, आदत बन गई है, पर गहरी आदत है बहुत। और कोई अगर आक्षेप आरोप कहे इसके बारे में तो हमारे क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा उसे, हमारे पास पॉइंट्स बहुत है इसकी उसको सुनाने के लिए। परंतु देखा गया है कि एक व्यक्ति है जो अमृत वेला करता है, सो जाता है, फिर छह बजे उठता है। दूसरा व्यक्ति है अमृत वेला करता ही नहीं, सीधा छह बजे उठता है। दोनों की स्थितियों में ज्यादा अंतर नहीं है। अमृत वेले के तुरंत बाद का समय श्रेष्ठ चिंतन का समय है, महान जर्निंग, ज्ञान के मनन का समय है। वही समय है जो हम बहुत अच्छा चिंतन कर सकते हैं, महान चिंतन कर सकते हैं। वो समय हाथ से नींद में अगर चला गया तो सारे दिन भर सेवाओं का विस्तार, लौकिक व्यवहार, क्या क्या हजारों बातें हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। परंतु फिर भी हरेक को अपनी दिनचर्या सेट करनी है। ऐसा भी किया जा सकता है कि इसके बजाय कि पूरा ही सो जाए, लेट जाए, थोड़ा सा लेट जाए, शवासन जिसको कहते हैं ना, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ना, सो नहीं जाना है, पर जितना हो सके इसके ऊपर काम करना है हर एक को। हमारा जो मधुबन में ग्रुप है मधुबन की क्लासेस वो चालू होती है 5:15 को हर दिन। अमृत वेला होता है, फिर वहीं पर मुरली होती है मेडिटेशन हॉल में सेवाधारियों की, और हम लोगों का जो क्लास है रिसेप्शन हॉल में ओम शांति भवन के नीचे वो चालू होता है 5:15 से लेकर आगे, सोने का कोई सवाल ही नहीं। वहां पर श्रेष्ठ मनन, चिंतन, अध्ययन, डिस्कशन सब कुछ, अलग अलग विधि, अलग अलग विषयों पर हर दिन। तो हमने देखा कि ये जो समय है ये सफल करने के वजह से ही बहुत सी आत्मा इतनी पावरफुल बन गई है, जो कि पहले सीधा जाके सो जाती थी और फिर उठती थी, फिर सीधा स्नान वगैरह करके मुरली में आ गए बैठे और दिनचर्या चालू, सेवाओं का विस्तार। ये जो समय है छोटा सा 4:45 से लेकर 6:30 तक बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें ज्ञान का मनन, चिंतन, अध्ययन, पठन, पाठन, वो क्या कह रहे हैं भाई जी, उनको तो सबसे पहला आलस आता है अमृत वेले का या फिर अमृत वेले के बाद, ये दोनों ही आलस मार्ग में बाधा है, जैसे उन्नति में बाधा है। ये एक अदृश्य रंग है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है इसके लिए, क्योंकि बाकी सब तो ठीक चल रहा है। परंतु इस ज्ञान मार्ग में ज्ञान का चिंतन न करना यह भी श्रीमत का उल्लंघन है, जबकि मुरलियों में हजारों बार आया है। जैसे गाय होती है क्या करती है, उगाड़ती है, खाने के बाद क्या करती है, उगाड़ती है। जो गाय उगाड़ती नहीं, साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, वो बीमार है। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, गोया बीमार है, फुल स्टॉप। क्योंकि जीवन में इतनी परिस्थितियां आती है कि हमारे पास ज्ञान का श्रेष्ठ बल चाहिए। योग तो है ही, परंतु ज्ञान का बल चाहिए, और ज्ञान का बल चिंतन से आएगा। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है, ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन। इसलिए ये समय सफल करना है। पहला तो ये, दूसरा मुरली, दूसरा आलस्य मुरली। हम वो नहीं कह रहे मुरली सुनाना या मुरली पढ़ना, वो नहीं। अध्ययन, स्वाध्याय। शास्त्रों में तीन बातें लिखी गई है, श्रवण, मनन, निनिध्यासन। श्रवण करना, सुनना, मनन करना, और फिर प्रैक्टिकल में लाना, निनिध्यासन जिसको कहते हैं। अब मुरली का क्या किया जाए, उस दिन हमने यहां पर चर्चा की थी ऐसी 26 अलग अलग मेथड्स मुरली पढ़ने की। शायद बहुत सारी बहनें नहीं थी, पर ऐसी बहुत सारी बातें उस दिन भी डिस्कस की थी हमने, थोड़ा सा बीच बीच में करेंगे चर्चा इसकी भी। तो मुरली को कैसे अध्ययन किया जाए, जैसे एक स्टूडेंट होता है फिलोसॉफी का, थीसिस उसको करना है, पीएचडी करनी है, कितना रिसर्च करता है उस टॉपिक पर, उसी तरह यदि हमको, यह मुरली नहीं है, एक मुरली अगर है कोई भी, उसको हमको सुनाना भी है। मुरली है आपके पास? हाँ इधर है, 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 है। यदि मुरली हमें सुनानी है तो सबसे पहले हमारी पूरी मास्टरी होनी चाहिए उसके ऊपर। ये जो मुरली है इस पर कंप्लीट हमारी मास्टरी होनी चाहिए, आप सभी मुरली सुनाने वाली हो। ऐसे नहीं कि हमने मुरली पढ़ी नहीं और सीधा क्लासरूम में गए और सुना दी। हमें स्टूडेंट्स को इसका अर्थ समझाना है। पढ़ तो वो भी सकते हैं, आजकल तो मुरली हर जगह अवेलेबल है, मोबाइल में, इंटरनेट में, सब जगह है, ऑडियो वीडियो सब कुछ है। पर हमें क्या करना है, हमें उसका अर्थ उन्हें समझाना है। शब्दार्थ चार वाक्य है, लिख के रखो, शब्दार्थ, भावार्थ, गुणार्थ, वाक्यार्थ। शब्द का अर्थ समझाना है, शब्दार्थ, भावार्थ जो भाव है उसमें उसको समझाना है, वाक्यार्थ उस पूरे वाक्य का अर्थ समझाना है, गुणार्थ एक गूढ़ अर्थ है उसमें, बहुत बड़ा सीक्रेट है उसमें, जो वाक्य जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है वो, बहुत डीप सीक्रेट उसमें है। और वो हमको पकड़ में आएगा जब उनको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। इसके लिए कल यदि हमको मुरली सुनाना है तो हमारा जो मुरली का रिवीजन है वो बाकी लोगों से एक दिन आगे हो। मतलब कल यदि मुझे मुरली सुनाना है तो आज 8 बजे से इसका अध्ययन चालू हो जाना चाहिए। आज रात को नहीं, मुरली सुनाने से पहले नहीं, आज दिन सुबह से, एक बार सुबह, फिर दोपहर को, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। अच्छा, मुरली इसमें से मुझे एक पेज का, ये पेज है, कुछ कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं, रुकने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ बातें पर कोई कोई वाक्य ऐसे होता है कि पूरा ही रोक देना पड़ता है और उसमें 5 मिनट देने पड़ेंगे आपको। और वो 5 मिनट आप तभी दे सकते हैं जब उसका आपने गहराई से मनन किया है, उस वाक्य का, ये जो वाक्य है इसमें कौन कौन से उदाहरण दिए जा सकते हैं यज्ञ के और बाहर के। हमने देखा था एक बहन कैसे मुरली पढ़ती थी, इतना उसका ये पूरा भरा हुआ रहता था, इधर पूरा भरा हुआ, इधर पूरा भरा हुआ, क्लास में मुरली सुनाने से पहले पूरा मुरली लाल पीली नीली हरी अलग अलग रंगों से इतना। और हमने देखा उनकी जो सुनाते थे इतना सुंदर तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि पढ़ तो वो भी सकते हैं, हमें ऐसा नहीं कि सारी पॉइंट्स एक्सप्लेन करनी है, कुछ कुछ एक पेज शायद आधा पेज वैसा ही पढ़ लिया पर एक वाक्य उसमें आ जाएगा जो एकदम ही अलग है, एकदम ही नया है, जो आज तक कभी सुना ही नहीं किसने, ना तो हमने भी सुना नहीं, हमने पढ़ा था पर ध्यान नहीं दिया था, ऐसा कोई वाक्य आ गया। जैसे आज की मुरली है, किसी से भी घृणा नहीं करो, रुक जाना है यहां पर, फिर अब ये जो घृणा है इसका थोड़ा विस्तार हो उसमें, और हमको 1 घंटे में पूरा भी करना है, इसके लिए कुछ कुछ बातें हम छोड़ देंगे पर कुछ कुछ में एकदम रुक जाए, उस रुक कर क्या बताना है उसका हमारा पहले से चिंतन हुआ हो, ये न करना भी आलस है। तो ये दूसरा आलस। तीसरा, भोजन। तीसरा भोजन और चौथा नींद। योगी जीवन में दो ही चीजें सेट करनी है सबसे ज्यादा, भोजन और नींद। जिसने ये सेट कर लिया योगी जीवन सफल, पर्याप्त नींद हो। ऐसे नहीं कि सेवाओं का इतनी खींचातान कि नींद का ही समय नहीं है, रात को 12 बज रहे, इधर फिर से 4 बजे अमृत वेला उठ रहे हैं और फिर दिन भर में भी रेस्ट नहीं। अभी दिनचर्या तो व्यस्त है, ऐसा भी नहीं कर रहे कि नहीं करो सेवा, परंतु हमें अपना रेस्ट का टाइम चुराना है, जहां हो सके चुरा लेना है समय, रेस्ट करना है, बजाय इसके कि बैठ के व्यर्थ की बातें करते रहो। सबसे अच्छा मेथड है सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, शरीर को आराम दे दिया। व्यर्थ बातें करने से अच्छा तो एक मुरली में था ना, विकर्म तो नहीं होते कम से कम, शरीर को रेस्ट बहुत जरूरी है। अगर इसको रेस्ट नहीं दिया, और मनुष्य का मन ऐसा डोलते रहता है पेंडुलम की तरह, एकदम बहुत ही ज्यादा आलस्य या तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं। अति सर्वत्र वर्जते, वर्ज है, अति में नहीं जाना है कोई भी चीज का। बहुत नींद करना और ना बिल्कुल नींद ना करना, ये योगी के लक्षण नहीं है। योगी अर्थात बीच में स्थिर, ऐसा नहीं कि बस सो ही रहो, नींद ही नींद, और दूसरी तरफ बिल्कुल ना सोना। अपनी नींद को खुद सेट करना है, यदि रात में 4 ही घंटे नींद हो रही है तो दिन में निकालकर 1 घंटा सोना, कम से कम 6 घंटा तो नींद चाहिए, कई लोगों को 7 घंटा भी चाहिए पर उससे कम नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना घंटा सोते हैं? नरेंद्र मोदी जी हो रास, दिन में नहीं सोते। ये शरीर जो है इसको जैसी आदत डालोगे वैसा वो चलेगा, ये तो है। इस शरीर को साधना होता है, शरीर को साधना, जैसे योगासन में आसन को साधते हैं। 3 घंटे यदि कोई एक ही आसन पर बैठा जाए तो उसको कहते हैं कि आसन जय, आसन जयी बन जाता है वो, उसे एक ही आसन पर 3 घंटा अगर कोई बैठे तो। इसके लिए संसार में तो ये हठ योग इस तरह का सिखाते हैं, परंतु यहां पर भी नींद पर्याप्त हो, क्योंकि अनिद्रा, नींद का अभाव तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। लंबे समय तक नींद ही नहीं आ रही, हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको इनसोमनिया, नींद ना आना, बहने भाई सेवाधारी सब, नींद ही नहीं आती है। अगर कोई, जैसे कहा, शारीरिक कारण है तो ढूंढो, ठीक करो उसको, डिस्टर्बेंस है तो उसको ठीक करो। तो नींद, अगला भोजन, भोजन का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लालच ना हो, बाबा कहते हैं ना खाऊ खाऊ म्याऊ म्याऊ, ये खाऊं वो खाऊं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बिना पूछ के खा लूं, मुरलियों में आते हैं ये सारे पॉइंट, सबको पता है। संयम, जिसने जिह्वा को जीत लिया 90% बाकी कर्मेंद्रिया स्वतः ही वश में आ जाती है। टंग जो है ना, टंग सबसे ज्यादा चंचल करती है, उसको जीतना। तो योगी अर्थात संयम, योगी अर्थात बैलेंस, योगी अर्थात भोजन का बैलेंस। हमारे पास 2 बहनें आई थी तो दूसरी बहन कह रही थी जब भी ये बहन जो है मधुबन में आती है हर 2-2 घंटे में उसको भूख लगती है, खाती रहती है खाती रहती है खाती रहती है, जो दिखे वो खाती रहती है, ये खाएगी वो खाएगी वो खाएगी वो खाएगी, दिन रात खाती रहती है। तो हमने सोचा ऐसा क्यों होता होगा, तो थोड़ा फिर थोड़ा गहराई में जाके पूछा वगैरह, तो पता चला वो जिस सेवा केंद्र में है वहां पर उसको बिल्कुल सख्त मनाही है खाने की, एक एक चीज गिन गिन के रखी हुई है। इसके लिए जब मधुबन आती है तो वो सारा बाहर निकल जाता है, क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, कुछ घर में रखूं कुछ कमरे में रखूं। तो ये कोई संयम नहीं है, स्वयं को स्टडी करना है, स्वयं के प्रकृति को, आदतों को, बॉडी को, कितना मुझे भोजन चाहिए कितनी मुझे नींद चाहिए। ये पूरा जीवन चला जाता है पर ये सेट नहीं हो पाता है। भोजन बहुत सूक्ष्म टॉपिक है ये, तो ये 2 का बैलेंस। तो कितने हो गए, 4। इसमें भी आलस, इसमें एक आलस इस तरह से कि लापरवाह हो जाना, ध्यान ही नहीं देना और फिर बीमारी आ जाती है। हमने ये भी देखा है कि कई बहनों ने ऐसे कुछ कुछ चीजें की है डाइट के साथ कि कुछ ही समय में शरीर पर दुष्परिणाम हुए हैं। डायटिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छी चीज है, परंतु ज्ञान युक्त हो, उसमें थोड़ा सा जानकारी भी हो शरीर के बारे में, अवयवों के बारे में, बीमारी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, तो ही वो करना, या फिर किसी के गाइडेंस के अंदर। खुद ही करते रहो तो फिर मुश्किल है, उसका दुष्परिणाम होता है शरीर पर। तो ये भी एक सूक्ष्म आलस जैसा है कि हम इसकी स्टडी नहीं करना चाहते। हर योगी को फूड की स्टडी करनी चाहिए, हर योगी को फूड की स्टडी करनी है, स्लीप की स्टडी करनी है कि फूड मैं जो खा रहा हूं खा रही हूं क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए। क्योंकि लंबा समय तक ये अगर अस्वस्थ रहा तो फिर धीरे धीरे शरीर प्रभावित होता है इससे। इसके लिए ये आलस भी है एक। इसके लिए जब हमको टाइम मिलता है थोड़ी हेल्थ रिलेटेड चीजें पढ़नी है, स्लीप के बारे में, फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, सीरियल्स के बारे में, सारी सीरियल्स जो भी अनाज, ड्राई फ्रूट्स के बारे में, किसमें क्या चीजें हैं, कुछ प्राकृतिक इलाज हमें पता हो, छोटी मोटी चीजें, ठीक है। फिर है अगला, आलस और अलबेलेपन की श्रृंखला में संबंध, अलबेलापन संबंध में, संबंधों में लगाओ तुरंत उत्पन्न हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अच्छा लगा तुरंत दोस्ती हो जाती है और फिर लगाव उत्पन्न हो जाता है उससे, और धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती जाती है और फिर वही व्यक्ति चाहिए, फिर वही अच्छा लगता है, फिर वो कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, कोई भी संबंध जो है। कल भी बात कर रहे थे, उसमें दिव्यता अलौकिकता तभी रहती है जब उसमें डिटैचमेंट हो। जब दो व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं हर चीज के लिए, अगर उसको किसने कुछ कह दिया तो हमको बुरा लगता है, अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो हमें बुरा लगता है, ये अटैचमेंट। हमने देखा पांडव भवन में दो बहनें बैठी थी, वो एक चम्मच से उसको खिला रही है, दूसरी उसको एक चम्मच से उसको खिला रही है। बहनों में बहुत ज्यादा आसक्ति, इतनी आसक्ति कि बस वही चाहिए मेरे साथ, थोड़ा सा अलग कर दिया तो आक्रोश। यदि संबंधों में दिव्यता ना हो, डिटैचमेंट ना हो, फैमिलियरिटी हो, तो वो संबंध धीरे धीरे डिटियोरेट होता है। हमने देखा है यदि यहां से संबंध चालू हुआ दो व्यक्तियों का, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, संपर्क बढ़ता है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, और आजकल सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप, एक मैसेज इधर से दूसरा मैसेज इधर से, कभी ये नाराज कभी वो नाराज, तो ये जो कॉन्टैक्ट्स है धीरे 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 बढ़ते 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 एक डिपेंडेंसी की स्टेज पे आ जाता है धीरे धीरे। और ये जो डिपेंडेंसी है धीरे धीरे शारीरिक लगाव और शारीरिक आकर्षण में रूपांतरित हो जाती है। चालू कहां से होता, सेवाओं से, और एंड जो उसका है कहीं के कहीं है। यहां से चालू की थी सेवाओं के संपर्क में, धीरे 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 बढ़ती जाती है मैत्री, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, कहां से चालू और धीरे 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 वो नियम छूट जाते हैं, फिर मर्यादाएं छूट जाती है, फिर एकांत चाहिए, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, कन्वर्सेशन, धीरे 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 धीरे, फिर कुछ भी हुआ तो उधर सुनाना। एक महत्वपूर्ण बात है नोट करने जैसी कि यदि हम अपनी जीवन की सारी बातें मनुष्य को सुनाते रहे, शेयर करते रहे, तो उससे शेयर करना धीरे धीरे कम हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति, एक भाई हमको मिल गया, बहुत अच्छा है, उसको हम अपनी जीवन की हर बात बता रहे हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ फोन किया बताया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, संपर्क किया, वो उधर से कुछ हल देगा, कभी देगा कभी ना भी देगा, अगर ना दिया तो गुस्सा, नाराजगी, क्रोध, कभी इधर नाराज कभी उधर नाराज। हमने देखा है इस ब्राह्मण परिवार में, इस ब्राह्मण परिवार में ये जो है चीज धीरे धीरे बढ़ रही है। नाम ऊपर से सब सेवा ही है, दिखाई कुछ भी नहीं देता है, पर आंतरिक पतन हो रहा है, आसक्ति लगाओ। इसके लिए इंग्लिश में कहते हैं ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स ग्रेजुअली समटाइम और द अदर डिटियोरेट्स इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स। चालू होती है स्पिरिचुअलिटी से, एंड होती है काम विकार से। ऐसे सोचते हैं कि निराकार तो है पर साकार में कोई चाहिए, पर बहुत खतरनाक सौदा है, क्योंकि जो साकार वाला है वो हद वाला है, जो साकार वाला है वो इतना शक्तिशाली नहीं है, एक अंधा दूसरे अंधे के पास जा रहा है राह पूछने के लिए, दो भिखारी आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे को संपन्न बनाने की चेष्टा करने। उस दिन भी कहा था संसार इसे विवाह कहता है, वही तो है वो इंस्टीट्यूशन। सोचते हैं ये मेरी साथी बन जाए, ये मेरा साथी बन जाए। क्या मनुष्य कभी साथी बन सकता है? क्या मनुष्य की कोई गारंटी है? आज हमने जिसको समझा ये मेरा सब कुछ है, कल शाम को, आज शाम को क्या होगा हम बता सकते हैं? किस पर भरोसा करें इस संसार में? कब किसकी बुद्धि बदल जाए बता सकते हैं? इसके लिए साकार सहारा चाहिए, भाई चाहिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में नहीं, मनोवैज्ञानिक जो स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड की, कहते हैं कि स्त्री की एक कमजोरी है कि उसे कंधा चाहिए रोने के लिए, रख कर रोने के लिए। अगर वो पुरुष का हो तो उसे ज्यादा खुशी होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है। क्यों हम किसी सहारे की अपेक्षा करें? वो खुद ही असंबन्न है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को कभी नहीं सॉल्व कर सकते। हमने उनको कितना भी बता दिया, पूरी डिटेल में सारी बात बता दी, परंतु उसका ज्ञान का लेवल कितना है, स्पिरिचुअल कैलिबर कितना है, वो कितने तल पर पहुंचा है, कितना गहरा योग है, चिंतन है, ध्यान है, अध्ययन है, नहीं। हमको भ्रम हो रहा है कि ये व्यक्ति, ये भाई मेरी मदद करेगा, कभी नहीं कर सकता है, धोखा देगा, मदद तो दूर। कई बहनें अनुभव सुनाती है कि जिन्होंने बहुत भरोसा किया किन किन पर, बाद में वही दुश्मन बन गए, बाद में उन्होंने ही उनकी ग्लानी की। एक बहन का हमको फोन आया था, इतनी रो रही थी, कह रही थी कि एक भाई उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो हमने भी खास उस बहन के लिए योग का सकाश दी थी पूरा एक मास तक। हम उसको जानते भी नहीं थे, वो तो किसी दूसरे भाई ने आके कह दिया कि ये बहन आपसे बात करना चाहती है, इसको देखो, इसको बहुत अर्जेंट जरूरत है, जो कि सेंटर पर रेगुलर आने वाला है, अब भी आ रहा है, सबकी दृष्टि में बहुत अच्छा है वो, पर अंदर से ये चालू है। बताए भी किसको, रो रही, मैं किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसी ऐसी बात हो गई है। ये सब क्यों? क्योंकि विश्वास कर लिया, जीवन के सारे रहस्य बताने चालू कर दिए। कितनी हायर लेवल पे पहुंची है जो आत्मा, जिसको हम बता रहे, कितनी पावरफुल है हमें क्या पता, शक्तिशाली हो ही नहीं सकती है। संसार की आत्माएं जो है, जो ज्ञान योग, जो ब्राह्मण भी है, अभी इतना कहां समझा है ज्ञान तो किसने? इसके लिए बाबा कहते हैं 1000 भुजा वाला खड़ा है, तुम जा रहे हो 2 भुजा वाले के पास। क्या कोई हमारी वास्तव में मदद कर सकता है? कभी नहीं। कल शायद कल मर्यादाओं की क्लास में एक बात बताई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी, एक स्त्री पुरुष दोनों को आपस में बहुत प्यार है, शादी करना चाहते हैं। स्त्री बहुत अमीर है, पुरुष गरीब है। वो कहती है मैं तुमसे ही शादी करूंगी, परंतु एक शर्त है, शादी करने के बाद हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, तुम उधर मैं इधर, बीच में एक झील, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाऊंगी। क्यों? वो कहता है ऐसी कैसी शादी है कि जिसमें हम साथ ही नहीं रहेंगे? वो कहते अगर साथ रहने लगे तो घनिष्ठता, संबंध बढ़ते जाता है, और वो जो संबंध में फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाती है। इसके लिए मैं चाहती हूं कि हमारा जो संबंध है सदा के लिए रहे, और ऐसा ही हमारा प्रेम बना रहे, देह से देह ना लगे। और हां, यदि तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम किसी और से शादी कर सकते हो, पर मैं केवल तुमको ही याद करूंगी और सारी जीवन ऐसे ही रहूंगी। कहने का भाव इसका अर्थ इस तरह से लगाते हैं जैसे वो झील जो है वो बाबा है, और हमारे संबंध वो उधर, हम इधर। अगर कोई मिल गया तो हेलो, टाटा, बाय बाय, ओम शांति, बस। ज्यादा और संबंध बढ़ाना, और घनिष्ठता बढ़ाना, और ऊपर से नाम सेवा का, दोष उम्र का है, स्त्री का न पुरुष का। इसलिए संबंधों में अलबेलापन ना हो। अगर अलबेले यहां हो गए, बीच में बाबा कहते हैं ना स्त्री पुरुष के बीच में ज्ञान तलवार चाहिए, वैसे ही स्टूडेंट्स और बहन के बीच में भी ज्ञान तलवार चाहिए। अगर ये ना रही तो कहीं के कहीं संबंध लेके चला जाता है। कितने हुए? 5। अगला धारणा, धारणाएं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्यूरिटी, जितनी भी धारणा है, एक धारणा की बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे ख्याल से, वो बीच बीच में पढ़ी जाती है। आजकल तो बहुत कम हो गया पढ़ना, पहले तो सेंटरों पर रिवाइज की जाती थी ना सारी धारणाएं, तो वो फिर से रिवाइज करानी है अपने स्टूडेंट्स को, उससे हमारी भी रिविजन हो जाए। सारी धारणाएं, समर्पित भाई बहनों की धारणाएं, स्टूडेंट्स की धारणाएं, पूरा एक बना हुआ है पूरा नियम और मर्यादाएं। तो ये जो नियम मर्यादाएं बीच बीच में, 2 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में, बीच बीच में रिवाइज कराना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इतने सारे सेवाओं का विस्तार है कि याद ही नहीं रहता है कि धारणाएं क्या क्या है, वो धारणा ही गुम हो जाती है बुद्धि से। तो धारणाएं, इसके प्रति अलबेले बने तो फिर कहां से कहां जीवन पहुंच जाता है, फिर दुख, अशांति, पीड़ा। जयंती बहन ने एक अनुभव सुनाया था, एक भाई का जो बहुत सेवा करता था, बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बना, और बहुत पुराना 30-40 साल, मतलब कुछ कुछ सेवाओं की तो शुरुआत ही उसने की। ऐसे भाई का अनुभव, बीच बीच में सेंटर पे आना कम हो गया। आता था तो उदास ही उदास दिखता था, बात नहीं करता था। पूछते थे सेवा क्यों नहीं करते आजकल, तो वो कहता था प्रोबेबली बाबा डजेंट वॉन्ट मी टू वर्क एनी मोर, ऐसे कुछ कुछ कहा नहीं देता कि बाबा नहीं चाहता कि अब मैं और सेवा करूं। ऐसे ब्राह्मणों के रॉयल उत्तर होते हैं ना, तो इस तरह से हर चीज में बाबा को लाना और फिर अपने, इसको कहते हैं फिलोसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा जनक श्रीमत, अपनी सुविधा के अनुसार श्रीमत को मॉडिफाई करना, फिलोसॉफी ऑफ कन्वीनियंस। साइकोलॉजिस्ट इसको फिलोसॉफी ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। जैसे टेररिस्ट कहता है कि हाँ मैंने गीता से ही सिखा है दूसरों को, भगवान कृष्ण ने ही सिखाया है, मारो वही तो मैं कर रहा हूं, वो अपने तरीके से ले लेता है। तो वो भाई, फिर उससे पूछा गया कि क्यों भाई, क्यों तुम ऐसे है, तो उसने ये कारण बताया। फिर अब जबरदस्ती तो पूछ नहीं सकते, कुछ दिनों बाद फिर पूछा तो फिर ऐसे कारण बताया। फिर एक बहन को खास बिठाया उसके साथ, पहली बार तो नहीं बताया, फिर धीरे धीरे उसने बताया कि उसको एक आदत पड़ गई है, दिन भर सेवा करना, रात में थक जाता हूं, इंटरनेट पर बैठता हूं और वीडियोस देखता हूं, अश्लील वल्गर, और वो देखते देखते कब 11 और 12 बज जाते पता ही नहीं चलता, अचानक से आदत लग गई 2 मास से। और फिर अमृत वेला उदासी, और फिर कुछ नहीं करने की दिल होती, उसने पर बता दिया। कितनी भी हम धारणाओं की बातें करें, पर जो क्लास में स्टूडेंट आ रहे हैं वो घर पे क्या करते हैं हमको पता नहीं है, इसके लिए सावधान। कितना ही ऊपर से कोई दिखाए कि हम बहुत धारणा युक्त है, परंतु कलियुग की वातावरण है, किसकी बुद्धि कब पलट जाए बता नहीं सकते। इसलिए धारणाओं को मजबूत करना है। 6. 7वां कर्म, 7वां है कर्म, एक्शन। हम जो भी सेवाएं करते हैं वो एक्यूरेट हो, ऐसा हम नहीं कर सकते कि ये काम मैंने किया नहीं, पर 10 अभी 5 साल हो गया, 1 साल हो गया, 6 मास हो गया, 6 मास से यह हो, अब तक तो उसमें परफेक्शन आ जाना चाहिए। कब तक हम एक ही बहाना बताते रहेंगे कि यह हमने किया नहीं था, इसकी हमको आदत नहीं है। नई चीजें सीखने के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए, त्याग चाहिए। तो हमारी जितनी भी, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म जो है उसमें कुशलता है। इसमें अगर ना आ रही है, छोटी छोटी बातों में गलतियां हो रही है, कोई भी सेवा दी और गलती, छोटी छोटी सेवाएं दी उसमें गलती, कारण हमको आदत नहीं है, हमने की नहीं, तो ये भी आलस का सूक्ष्म रूप है। तो जहां जहां जीवन में आलस्य है, ये सात बातें बताई, फिर से रिवाइज करेंगे। पहली अमृत वेला, दूसरा मुरली का गहन अध्ययन, केवल ऊपर ऊपर से बाहरी स्टडी नहीं, गहन अध्ययन, और इस मुरली से कुछ होमवर्क निकाल लेना है अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए रोज, ताकि स्टूडेंट्स भी बिजी हो जाए ज्ञान में, योग में, नहीं तो वो भी व्यर्थ में चले जाते हैं, व्यर्थ में कुछ कुछ करने लगते हैं। उनको इतना बिजी कर दो कि व्यर्थ में जाने का टाइम ही ना हो, एक तो ज्ञान में, योग में या सेवा में, सबको। वो तब होगा जब हम खुद होंगे, जब हम धारणा स्वरूप होंगे, तो ही हमारे बोल में शक्ति होगी, नहीं तो हम बोल रहे परंतु कर नहीं रहे तो पावर नहीं होगी, तीर नहीं लगेगा। परंतु जो व्यक्ति खुद करता है उसके बोल में एक अद्भुत प्रवाह होता है, एक ऐसा ऐसा तेज, एक ऐसा ओज कि जो सीधा के सीधा जाके दिलों को चीर देता है। ये प्रवाह अगर वही शब्द वही भाषण किसी और को दिया जाए और कहा कि पढ़ो, तो वो प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि यहां क्या बोल रहा है, धारणा बोलती है, धारणा में पावर होती है। यदि हमारे ही अंदर वो धारणा ही नहीं तो कैसे होगा। कोई व्यक्ति 8 बजे उठकर 9 बजे जाकर अमृत वेले पर भाषण कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, भाषण कला है, बहुत सुंदर भाषण कर सकता है अमृत वेले पर, कितने बजे उठकर, 8 बजे उठकर। तालियां भी बहुत बजेगी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हॉल से बाहर आउट, यहां नहीं लगा, केवल यहां तक गया। बोल में पावर आएगी धारणा से। पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा भोजन, चौथा नींद, पांचवा संबंध, संबंधों में डिटैचमेंट, डिटैचमेंट लानी है, छठवा धारणा है, धारणाओं को फिर से रिवाइज करो, कौन सी धारणा मिसिंग है, और लास्ट कर्म, कर्म एक्यूरेट न होना भी आलस्य की निशानी है। तो इसकी हमको फिर और बार बार चेकिंग करनी है। अभी अगला एक टॉपिक और है, अभी हम फिर से एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, और अगला टॉपिक है पुरुषार्थ की लंबी रेस का साथी ब्रह्मचर्य, पुरुषार्थ की लंबी रेस का साथी ब्रह्मचर्य, इसकी चर्चा 5 मिनट के बाद। ओम शांति।